رسول اللہ مدد تمہارا ایمان ہے، یا علی مدد تمہاری پہچان ہے، نعرہ حیدری
یا علی مدد حیدر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، رحمة للعالمین، ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔
أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ All praise and glory belongs to Allah, the one who created us a dependent of His, the one who made us in our existence dependent on His existence, the one who allowed us to be in His submission, to grant us the biggest honor that He bestowed upon any of His creations. That although all the creations of Allah subhanahu wa ta'ala are in glorifying and in praise of Him, that يُصَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, that all that Allah subhanahu wa ta'ala has created is in constant glorification of Allah subhanahu wa ta'ala, but He gave us the ultimate and the highest opportunity to praise and glorify Him, because we have the choice to do that. If we decide to take that opportunity and we glorify Him, we will come to the conclusion that it is not just the glorification or praise that Allah subhanahu wa ta'ala deserves, but the one thing that He deserves the most from us is the realization that we are completely and utterly dependent on Him. And once we realize that we are completely and utterly, absolutely dependent on Him, then the person would realize that there is nothing in the person's life but to have the opportunity to become one of those individuals who are thankful. Allah subhanahu wa ta'ala created us dependent of Him, but to test us whether we are going to become dependent of Him, He put instilled inside of us independency. When we were born, we were dependent. The mother gave us milk, we took it. Whatever mother could provide to us, we took it. We were completely dependent of her. We could not do anything on our own. But as soon as we started to realize that we can start doing something on our own, we wanted to do everything on our own. When the child reaches the age of 5 or 6, you have seen that, you know, you will say, okay, grab my hand, I will walk with you. They say, no, I want to walk myself. The mother says, I'll feed you. The child says, no, I'm going to feed myself. The mother says, I'll clothe you. The child says, no, I'm going to clothe myself. She'll say that, I can do things for you. The child will respond that, I'm not a child anymore. I'm not a child anymore. I want to do things on my own. When the child starts learning how to ride a bike, there's always the training wheels that are given, or there's a three-wheeler, tricycle. The child says, no, I don't want to use a tricycle because my elders are using only two wheels. It's a bicycle. So from there he says, no, I don't want to use that. I don't want to be dependent on three wheels. I want to be dependent on my own balance. Where you're going to take the training wheels off the bicycle and I'm going to ride it myself. I can read you a story. No, I want to read the story myself. And you might have gotten to the point where you understand this, that we want to be independent in our lives. The father and mother say that, okay, we will marry you. We will give you the opportunity to get married and you can live with us. The person says, what? No, I would like to be independent. I want to move out of your house and I want to go and get my own house. I want to get my own apartment and I want to be independent. If you look at the life of a person, all the different phases that the person goes through, every single phase the person is trying to be independent, not dependent. But unfortunately, the person's phase of life comes to a point where the person cannot stand by himself or herself. Cannot walk by himself or herself when the person gets old. Gets to that stage of being dependent again. And those kids who they raised, who were dependent on them, decide that now that my father or my mother is dependent on me, I am not going to support or help my parents. So what will I do? I will put them in a nursing home. Because it becomes as such, they're dependent on me and I don't want to take care of them, although they took care of that child when the child could not do anything on their own. And at that stage, the person starts realizing, you know, all my life, I lived for to be independent. Now that my life is at end, I have become dependent on individuals. But we can have this sort of recognition or realization now. But once we have this recognition or realization now that we are not independent but dependent, but not dependent on people but on Allah subhanahu wa ta'ala, even when we get to that age where we're going to become dependent, Allah subhanahu wa ta'ala will make us dependent of those individuals, those kids of ours, that we will never feel that we are a burden on them. That these kids will take care of us in such a manner that we do not need to realize this before we leave this world. Karbala, Kufa or Sham, jis cheez ke mukhalif hai woh hai khud khahi. Khud khahi samajh rahe na? Ye jo abhi English mein kaha, usi ko koshish kar rahe hain ki Urdu mein kahe. Khud khahi, yani jo main chahta hoon. یعنی جو میری خواہش ہے, یعنی میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں. کربلا کوفہ اور شام اس کے ساتھ مبارزہ کرتے ہیں. مبارزہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم یہ جو خود خواہی کر رہے ہو اس خود خواہی سے ہٹا کے خدا کی خواہش کو مقدم کرو اور خود خواہی کو نکال دو. اگر خود خواہی کو نہیں نکالو گے تو پھر اس دنیا کے اندر تمہیں یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ تمہاری جتنی بھی خواہشات تھی, جتنا بھی تم مستقل اپنے آپ کو سمجھتے تھے, خدا تمہیں دکھا دے گا کہ تم کسی بھی چیز میں مستقل نہیں ہو. اور یہ کس طرح سے دکھائے گا؟ اگر وہ تم سے پیار کرتا ہے کچھ ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا کہ جس میں تم اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. اس طرح سے فقر میں مبتلا کر دے گا کہ تم اس فقر سے نکل نہیں پاؤ گے. تو جو کربلا کا فرہنگ ہے یا کربلا اور کوفہ اور شام جس چیز کے اگینسٹ ہیں وہ ہے خودخواہی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم میں خودخواہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور کربلا کہہ رہے کہ خودخواہی نہ رکھو, خدا کہہ رہے کہ خودخواہی نہ رکھو, کہہ بھی رہا کہ خودخواہی نہ رکھو اور کوٹ کوٹ کے بھر بھی دی. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ خودخواہی کیونکہ کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے اختیار سے میرے بندے بن جاؤ. کہ یہ جس خودخواہی میں تم پڑے ہوئے ہو تمہارے ہاں تمہارے اندر ہے, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اپنے اختیار سے, اپنی عقل سے, اپنے جذبات سے, تمام کی تمام چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں, اس تمام کی تمام نعمتوں کو آشکار کر کے یہ اس خودخواہی کو نکال دو. امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کی چمک اور دمک اتنی زیادہ تیز ہو چکی جس سے ہر کسی کی آنکھیں اس کی طرف جمی ہوئی تھی. بیت المال کے اندر یہ سب فتوحات کی بنا پہ اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ وہ پیسہ یعنی آج کل کے زمانے میں حتیٰ کہ اس وقت شاید عرض کر چکے ہیں کہ جو سربراہ ہے ایک اسلامی حکومت کا, جمہوری اسلامی حکومت کا, اس کے پاس 17 بلین ڈالرز ہیں, اور جو کوئین ہے اس کے پاس 6 یا 7 بلین ہے, مجھے اب اگزیکٹلی یاد نہیں رہا. یعنی ملکہ برطانیہ سے اس کے پاس آلموسٹ ٹوائس جو ہے وہ پیسہ زیادہ ہے. جب آپ اس زمانے کی طرف نگاہ کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ حکمران تھے ان کے پاس کہیں زیادہ آج کل کے حکمرانوں سے پیسہ تھا, اور وہ لوگ جو ان کے درباروں میں تھے, وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے, وہ لوگ جو ان کے ہاتھ بنے ہوئے تھے, وہ لوگ جو ان کے حمایتی تھے, وہ لوگ جو ان کے پیرول پہ تھے, ان کو جتنا پیسہ اس زمانے میں مل رہا تھا آج اس زمانے میں ان کو اتنا پیسہ نہیں مل رہا. اور یہ سارے کے سارے لوگ ان کی جو نگاہ لگی رہتی تھی ہر وقت وہ بادشاہ کے یا خلیفہ کے یا حاکم کے ہاتھ کی طرف ہوتی تھی کہ ہم کس طرح سے کیا کریں کہ ہمیں اس ہاتھ سے اشرفیاں اور سونا اور چاندی ملتا رہے. اس بنا کے اوپر انہوں نے ہر چیز جو کہ اسلام کے اندر مقدس تھی اس کی تقدیس کو ختم کر دیا. اگر آپ کو یہ بات جو ہے وہ لگتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا تاریخ میں, تو امام حسین کے قتل کا فتویٰ 1,00,000 درہم کے اندر آ گیا تھا. 50,000 درہم ڈپازٹ دیا گیا اور باقی کا کہا گیا کہ آپ کو بعد میں ملے گا. ان پیسوں کی بنا پہ فتویٰ جاری کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا خون کیا ہے, اس کو بہایا جا سکتا ہے, حلال ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اس وقت جو لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ ہم اس وقت ہو سکتا ہے کہ امیجن بھی نہ کر سکیں, اور جن کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ اتنے فقیر تھے کہ ہم ہو سکتا ہے ان کی فقیری کو بھی امیجن نہ کر سکیں. یہ دو طبقات اتنے زیادہ ہو چکے تھے, یعنی اتنا زیادہ ڈفرنس ہو چکا تھا کہ مڈل کلاس आपको नहीं मिलती थी, या तो गरीब था या फिर अमीर था, मिडिल क्लास नहीं मिलती थी, क्योंकि जितने लोग अमीर होते हैं उतने ही लोग गरीब होते हैं, जितने ही ज्यादा अमीरों की तादाद में इजाफा होता है उतने ही गरीबों की तादाद में इजाफा होता है, गरीबों की तादाद में किस तरह इजाफा होता है, वो जो मिडिल क्लास होते हैं वो गरीब बन जाते हैं। तो इमाम सज्जाद के जमाने में एक तो हमने आपसे अर्ज कर चुके हैं, वन थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे वर इंडिविजुअल्स विद सर्टेन टाइप ऑफ एनिमलिस्टिक बिहेवियर, ऑन द अदर साइड इमाम हैड टू डील विद द वन वर्ड दैट वाज कॉमन अमंग ऑल ऑफ द एनिमीज of Ahlul Bayt al-Muslim is the love of this world. आपने तारीख को पढ़ा हुआ, मुझे उसके अंदर नहीं जाना ना ही अभी मसाइब शुरू करनी है। अर्ज कर चुके कि शिमर से जब इमाम हुसैन पूछ रहे थे कि तुम मुझे ये क्यों मार रहे हो, क्यों कत्ल कर रहे हो, तो उसका जवाब जो आखिर में था वो यही था कि मुझे सोना चांदी जवाहरात मिलेंगे। आप किसी भी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के दुश्मन की तरफ अगर निगाह करेंगे तो जो चीज आपको कॉमन नजर आएगी वो हुब्बे दुनिया है। और अगर आज उनके मोहब्बत करने वालों के अंदर आपको हुब्बे दुनिया नजर आ रही ना, मसलन मैं कहता हूं कि इमाम अली मुझे आपसे मोहब्बत है लेकिन मेरे दिल में हुब्बे दुनिया है, अगर दिल में हुब्बे दुनिया है आप यकीन करें कि इमाम अली से जो मैं मोहब्बत का दावा कर रहा हूं ना ये काजिब है, झूठी दावा झूठी है, क्योंकि जिसके दिल में अली की मोहब्बत आ जाए उसके दिल से हुब्बे दुनिया निकल जाती है, ये इमाम अली की मोहब्बत का कमाल है। अगर किसी को वाकई नहीं इमाम अली की मोहब्बत हो जाए तो उसके दिल में से हुब्बे दुनिया निकल जाती है, यानी अली के मुहिब के दिल के अंदर एक ही जगह है, या तो अली की मोहब्बत है, अगर तो अली से मोहब्बत है तो फिर सिर्फ और सिर्फ अली की मोहब्बत, अगर अली से मोहब्बत नहीं है तो फिर अली की मोहब्बत और हुब्बे दुनिया दोनों जमा नहीं होती, यानी ऐसा नहीं होता कि एक दिल के अंदर हुब्बे दुनिया भी हो और अली की मोहब्बत भी हो, नहीं, जैसे ही हुब्बे दुनिया आई अली की मोहब्बत चली गई और जैसे अली की मोहब्बत आई हुब्बे दुनिया चली गई। तो कोई शख्स भी अगर ये दावा करता है कि मुझे इमाम अली अलैहिस्सलाम से प्यार है तो उसके अंदर हुब्बे दुनिया नहीं हो सकती अगर सच्चा है। अब हुब क्या और दुनिया क्या चीज है ये एक अलग मौजू बन जाएगा, लेकिन अगर जिस चीज की तरफ हम आपको मुतवज्जे करना चाह रहे हैं अगर एक जुमला कह के उसकी तरफ आ जाएं, हुब्बे दुनिया इंसान के दिल में क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर खुदा ने खुद खाही कूट कूट कर भरी हुई है, यानी ये खुद खाही होती है जिसकी बिना पर इंसान हुब्बे दुनिया रख लेता है। अगर वो अपने आप को खुदा का मोहताज समझे, अगर वो खुदा का अपने आप को डिपेंडेंट समझे तो कैसे हो सकता है कि उसके दिल में हुब्बे दुनिया आ जाए। अगर वो अपने आप को खुदा का मोहताज समझेगा, इफ ही फील्स दैट ही इज डिपेंडेंट और शी इज डिपेंडेंट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देन व्हाट विल कम इनसाइड ऑफ दैट पर्सनस हार्ट इज नॉट द लव एंड द अटैचमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बट व्हाट विल कम इनसाइड ऑफ द पर्सनस हार्ट इज द वर्ड थैंक्स। जो उसके दिल में चीज आएगी वो हुब्बे दुनिया नहीं होगी, वो इन चीजों के साथ अटैचमेंट नहीं होगी, बल्कि जो उसके दिल में बात आएगी वो होगा शुक्र, यानी वो शाकिर बन जाएगा। शुक्र का जो ऑपोजिट है वो कुफ्र है, जी नहीं, जहां पे भी आप शुक्र देखेंगे कुरान में उसका जो ऑपोजिट आया है वो कुफ्र है। या तो इंसान की फिर दो कैटेगरीज हो जाती हैं, या तो शाकिर है या फिर यही है ना, हमने उनको रास्ता दिखा दिया, अब इनमें इस रास्ते में से कोई जो है वो शुक्र कर ले कोई कुफर कर ले, तो या तो हम तो ये समझते हैं या तो मुसलमान है, दो ही चीजें, या तो शख्स मुसलमान है या फिर वो काफिर है। कुफर असल में हकीकत के अंदर कहते हैं किसी चीज को छुपाने के, हम खुदा के मोहताज हैं, जब हम इस चीज को छुपाते हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। जब हम इस चीज को आश्कार करते हैं, शुक्र का मतलब होता है आश्कार करना, जब हम इस चीज को आश्कार करते हैं तो हम बन जाते हैं शाकिर। तो वो शख्स जो कि शाकिर है, जो कि आश्कार कर रहा है उन नेमतों को जो खुदा ने उसको दिए और उनको छुपा नहीं रहा, वो इस नतीजे पे पहुंचता कि मेरे पास खुद से तो कुछ भी नहीं है। जब मेरे पास खुद से यानी खुद का यानी मेरे पास जब खुद से कुछ नहीं है तो मैं फिर किसी चीज के साथ अपने दिल को क्यों बांधूं? दिल को तो मैं तब बांधूंगा किसी चीज के साथ जब मैं कहूंगा वो मेरी है। जब हर चीज खुदा की है तो फिर कैसे कह सकता हूं कि वो मेरी है? जब ये नहीं कहेगा कि मेरी है, खुदा की है, तो फिर उसके बाद का जो दर्जा है वो शुक्र का है, वो हुब्बे दुनिया का नहीं है। जब वो खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता और समझता है कि हर चीज उसके से है, तो फिर उसका जो दर्जा बाद में आता है वो है हुब्बे दुनिया। आप एक होटल में जाते हैं, ये मिसाल शायद पहले दियो, आप एक होटल में जाते हैं, वहां पे फर्नीचर होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, आपकी जिंदगी के तमाम वसाइल होते हैं जो आपको चाहिए एक रात या दो रात गुजारने के लिए। आप एक या दो रात उधर गुजारते हैं, जब आप उस कमरे से निकल रहे होते हैं तो ये अफसोस नहीं कर रहे होते यार इतना अच्छा फर्नीचर मैं छोड़ के जा रहा हूं, यार ये जो टीवी था HD भी था, 1080p भी था, 3D भी था, साथ में केबल भी लगी हुई थी, सारे चैनल भी आ रहे थे, और जो सोफा था लेदर था, एशली का था, और ये तरह तरह के उस पर डिजाइन बने हुए थे। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, मैं इनको छोड़ के जाऊं। क्यों नहीं अफसोस करते, क्यों नहीं उन चीजों के साथ आपका दिल बनता? क्योंकि आपको ये यकीन है कि ये चीजें आपकी, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ होटल की चीजें हैं, और बेसिकली ये होटल ने वालों ने मुझे प्रोवाइड की हुई है कि मैं आऊं एक रात रहूं, दो रात रहूं, और रहने के बाद यहां से चला जाऊं। जब लोगों से पूछा जाएगा तुम इस दुनिया में कितना अरसा रहे, कहेंगे कि हो सकता है एक या दो दिन, हो सकता है कि एक लम्हा या दो लम्हा हम इस दुनिया के अंदर रहते। तो जो शख्स एक या दो दिन के लिए इस दुनिया के अंदर आता है, अगर वो इस बात को समझ जाए कि ये एक होटल है, मुसाफिर खाना है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो खुद मुसाफिर है, तो कैसे हो सकता है किसी भी चीज के साथ अपने दिल को बांध ले? तो मसला कहां पे हो रहा है? हम समझते ये नहीं है कि हम यहां पे मुसाफिर हैं, हम समझते ये नहीं है कि हम डिपेंडेंट है खुदा के, हम समझते नहीं है कि हमारी बरगश्त, हमारी वापसी खुदा की तरफ है। हम समझते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम समझते हैं कि हम इस दुनिया में रहने आए हैं, यानी यही हमारी दुनिया है, यानी इस दुनिया के बाद और कोई दुनिया नहीं है। तो फिर क्या होगा अगर कोई शख्स ये हालत पैदा कर ले, that person is like that, they will get to the level of being thankful। सिर्फ और सिर्फ ये एहसास काफी है कि इंसान खुदा की शनाख्त और मार्फत हासिल करे। गौर से सुना था आपने, अगर हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है ना कि हम खुदा की मार्फत हासिल करें, इसका मतलब क्या कि अभी हम उस शुक्र के मकाम पे नहीं आए। और इस बात को भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी, हम सज्जाद की जो है वो खास निगाह अता हमारे पर रही, इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद खुदा कहता है कि मेरी मखलूक को मेरे साथ मोहब्बत में डाल दे, यानी उनसे कहे कि वो मेरे साथ मोहब्बत करे। मोहब्बत बगैर मार्फत के होती नहीं, अगर होती है तो मोहब्बत नहीं होती। हज़रत मूसा से कहा कि मेरी मखलूक से कहे, ठीक है मैं तो आपसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपकी बाकी की मखलूक को कैसे कहूं कि वो आपसे प्यार करें? I love you, but how can I tell your creation to love you? I love you, but how can I tell them? Allah SWT beautifully replied that tell them to start counting my blessings. अगर ये लोग जो कि मेरे साथ मोहब्बत नहीं कर रहे ना, जिनकी कि मेरे साथ लगता है सुलह नहीं है, जैसे लगता है कि वो मुझसे नाराज हैं, कि मैं उनको बुला रहा हूं कि सुबह आ जाओ मेरे पास, वो कह रहे नहीं हमें नहीं आना, सो रहे थे। वो कहते मैं उनको दिन में 5 दफा बुलाता हूं, मेरे पास आ जाओ, मेरे अगर पास आओगे मैं तुम्हें जो चाहोगे दे दूंगा, मेरे पास सारे खजाने हैं, मेरे पास सारी ताकत है, मेरे पास सारा इल्म है, जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं उनको बुलाता रहता हूं, कोई आता है? मुझे कहता हूं जो भी मांगने मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारे नजदीक हूं, हर किसी से मांगते हैं लेकिन मेरे से नहीं मांगते। उनको मैंने जब खल किया ना, तो खल करने के बाद मैं जिस तरह से उनके साथ रवैया रखता हूं ना, उनको यह एहसास होता है कि हमारे अलावा खुदा ने किसी और को खल की नहीं किया। कभी ऐसा एहसास हुआ? हम जो हाथ उठा के दुआ मांग रहे होते हैं, मुस्लिम आप किसी मौलाना को एक सवाल भेजते हैं, आप समझते हैं कि आप ही का सवाल है, यानी जो उसको ईमेल भेजती है ना, आप वो सिर्फ आप ही की ईमेल उस तक पहुंची है और कोई ईमेल नहीं देता। अगर कोई एक ऐसा शख्स हो जिसको 10 मिलियन ईमेल आ रही हो, 10 मिलियन ईमेल आ रही हो शख्स को, और अब आपकी ईमेल का इस तरह से वो जवाब दे जैसे और कोई ईमेल आई नहीं, इस तरह से और इतनी जल्दी जवाब दे कि जैसे कि उसके पास और कोई ईमेल आई नहीं, कि सिर्फ वो आप ही की ईमेलों को रिसीव करने के लिए बैठा है, कैसा होगा? अजीब नहीं? खुदा के लिए, खुदा के पास हर कोई दरख्वास्त अपनी भेजता है। अगर झूठे खुदा के पास भी दरख्वास्त भेज रहा है तो वो दरख्वास्त जाती खुदा के पास ही है। ये 7 बिलियन लोग हर लम्हे खुदा को ईमेल भेज रहे हैं, दरखास्तें भेज रहे हैं, और रिप्लाई ऐसे करता जैसे उसके पास और किसी की दरखास्त ही नहीं आती। खुदा कहता है कि मैं इस तरह से इनके साथ रवैया रखता हूं कि हर दर्द, हर गम, हर चीज जो इनको चाहिए होती मैं इनको दे रहा होता हूं। ये मेरे साथ कैसे रवैया रखते हैं? जब मेरी बात आती तो समझते हर कोई खुदा है सवाए उसके, मैं उसे बुलाता हूं आ जा, मेरे बुलाने के बजाय हर किसी के पीछे फिर पड़ता, मैं उसे कहता हूं मेरे लिए सिजदे में गिर जा, हर किसी के लिए सिजदा कर रहा होता है सवाए मेरे। सही? तो मुझसे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि इनसे कहो कि मेरी नेमतों को गिनने लग जाएं, जैसे जैसे ये नेमतों को गिनेंगे मुझसे प्यार हो जाएगा, यानी मुझसे सुलह हो जाएगी, यानी मैं बुलाऊंगा नमाज के लिए आ जाएगा, मैं कहूंगा मेरे लिए सिजदे में गिर जा, गिर जाएगा। हत्ता उस हद तक अगर ये शाकिर बन गया, मैं कहूंगा कि अली असगर को दे दे, मैं कहूंगा 6 माह के बच्चे को दे दे मुझे, मेरा खुदा ये कुर्बानी और ये अमल भी मेरे लिए आसान है क्योंकि तू देख रहा है, यानी वो शुक्र के उस दर्जे में पहुंच जाएगा। और ये जो आपसे अर्ज किया कि शुक्र के लिए अगर बंदा शाकिर बन जाए तो उस पर वाजिब हो जाता है कि वो खुदा की मार्फत को हासिल करे, ये कैसे एक एग्जांपल दे देते हैं। और फिर जो दुआ है इमाम सज्जाद की आज, जिसके हवाले से शायद बात कर सकें, और इमाम सज्जाद ने जिस तरह से शुक्र करना सिखाया, अगर हम उसको सीख लें, इमाम सज्जाद ने जैसे शुक्र करना सिखाया ना, अभी तक हमें पता भी नहीं है कि उन्होंने शुक्र कैसे किया। एक शख्स है, वो मैं घर में बैठा हूं या चले मैं बन जाता हूं, बुरा इंसान हमेशा मैं बनता हूं, मैं ही बनता हूं दोबारा, मैं घर में बैठा हूं और मुझे जो है वो, मैं मौलाना के साथ शायद सही ना रहे, तो आप घर में हैं और आपको एक पार्सल आता है, ठीक है, आप उस पार्सल को खोलते हैं, उस पार्सल में $1 बिलियन पड़े, आपके पास पार्सल, क्योंकि हमने कहा कि अगर हमारे पास आएगा आपको शक हो जाएगा, आपके पास पार्सल आया, उस पार्सल को आपने खोला, $1 बिलियन उसके अंदर है। जब आपने उस पार्सल के ऊपर सेंडर का देखा, कोई एड्रेस नहीं है, कोई नाम नहीं, आपके पास एक बिलियन डॉलर्स आ गए पार्सल के, लेकिन पार्सल पे पता नहीं लगा कि किसने भेजा है। अब आप क्या करेंगे? यही करेंगे चलो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए एक बिलियन, चलो खैर है, ये करेंगे? या आप कहेंगे कि नहीं, ये जिसने मुझे एक बिलियन डॉलर भेजा है, मेरी कम से कम ये होना चाहिए कि मैं उसको ढूंढूं। कोई शख्स ऐसा नहीं होगा अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत हो ना, थोड़ी सी भी इंसानियत हो, एक थोड़ा सा आपको कोई कॉफी ले देता है आप उसके गुलाम बन जाते हैं, कोई कॉफी का वादा दे देता है उसके गुलाम बन जाते हैं। नहीं, यानी एक बिलियन डॉलर रिसीव करने के बाद अगर मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत, इफ आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमैनिटी, व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू फाइंड दैट पर्सन। आप कोशिश करेंगे, यू विल ट्राई टू फाइंड दैट पर्सन हु इज गिवन यू दैट वन बिलियन डॉलर्स। अब आप क्या करते हैं, यू गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड यू से टू देम, आई रिसीव दिस पर्टिकुलर पार्सल एंड आई लाइक टू ट्रैक इट वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। मैं समझना चाहता हूं कि ये कहां से आ रहा है, तो मैं ट्रैक करना चाहता हूं ये वाला पार्सल है, आपने किस शहर से इस पार्सल को, यानी कोई थोड़ा सा मुझे बता दें, कोई छोटी सी हिंट दे दें, कोई आयत दे दें। आयत यानी क्या होती है? निशानी, कोई छोटी सी कोई आयत दे दे। इन्ना कल कहो सर, एक छोटी सी निशानी दे दे, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ छोटी सी निशानी दे दे, मैं उस तरफ चल पड़ूंगा। आपको उन्होंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल फला शहर, वो नाम भी नहीं लेता, फला शहर से ये पार्सल चला था। अब आप क्या करेंगे, उस छोटी से निशानी से अपना फौरन सामान बंद किया, या कि अगर सामान भी नहीं उठाया फौरन निकल जाएंगे, वो शहर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि अब और आपकी जो मार्फत है ना, वो उसके यानी और निशानियां देखें। अब आप उस शहर में आगे, उस पोस्ट ऑफिस के पास आगे, आपने कहा कि मोहल्ला कौन सा था, उसने कहा मोहल्ला ये था, उस मोहल्ले में चले गए, उस मोहल्ले में जाके जो रेगुलर पोस्ट जो बक्से वगैरह होते हैं वहां से जो है वो पता करने लगे, करते करते आप उस शख्स के घर पे पहुंचे। सही है, जब आप घर पे पहुंचे तो उस शख्स ने फॉर एग्जाम्पल दरवाजा खोला, अब आप कैसे उसका शुक्रिया अदा करेंगे? कम से कम जो शख्स होगा वो कहेगा शुक्रिया आपका, आपने एक बिलियन डॉलर भेजा। ये मैं कहता हूं तब हो सकते हैं जब एक डॉलर भेजो। अगर एक डॉलर भेजो ना, तो वैसे तो आप नहीं जाएंगे कि सारा छानबीन करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक डॉलर ना, तो हो सकता है शख्स कहे थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने हमें एक डॉलर दिया। जब उनका दरवाजा खोलेगा, आप ये नहीं करेंगे शुक्रिया, अभी शुक्रिया का मकाम नहीं आया, आप उसे ये कहेंगे कि तुमने मुझे एक बिलियन डॉलर क्यों भेजा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं, ठीक है, तुमने मुझे एक बिलियन डॉलर क्यों भेजा, मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मैं इस नेमत को उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक मुझे पता ना लग जाए तुमने ये नेमत मुझे क्यों दी। इंसान को खुदा इतनी नेमतें देता है, कभी ये सवाल नहीं पूछता खुदा ये नेमत मुझे दी क्यों, इस नेमत के देने का मकसद क्या है। आप अब थोड़ा सा उसी एग्जाम्पल तक रहे हैं, अभी दरवाजे तक बात पहुंची है, ये जो मैं आपको देख रहा हूं ना, आपको मैं देख पा रहा हूं, इस देखने के लिए जो साइंटिस्ट कहते हैं, पता नहीं उन्होंने किस तरह से काउंट किया है, लेकिन कहते हैं कि मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर, दे हैव टू वर्क टुगेदर टू बी एबल फॉर अ पर्सन टू सी। कितने सेल्स चाहिए? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, they all need to communicate, सब एक दूसरे के साथ बात करें, ये ना कि झगड़ा हो जाए, उसने एक साथ दूसरे से कहा भाई मैं तो तेरे हाथ में हाथ नहीं रखने वाला क्योंकि मुझे तू अच्छा नहीं लगता। नहीं, ये जितने के जितने सेल्स हैं, इन सारे के सारे सेल्स के अंदर इत्तेहाद होगा, मुत्तहिद होंगे, एक दूसरे से प्यार करते होंगे, हाथ में हाथ डालेंगे तो तब वो शख्स या मैं देख पाएगा। अब आप मुझे बताएं कि एक आंख की वर्थ कितनी होगी इस दुनिया के अंदर। ये जो आंख जो खुदा ने हमें दी है, अगर कोई एक ऐसा शख्स हो जो कि इस दुनिया में अंधा आए और जिसको डॉक्टर कह दें कि तुम कभी देख नहीं सकोगे, अगर उसके पास $10 बिलियन हो, $100 बिलियन हो, $1 ट्रिलियन हो, $250 ट्रिलियन हो, जितना भी उसके पास पैसा हो वो देने के लिए तैयार हो जाएगा कि आप मुझे जो है ना एक दफा दिखा दे, मैं एक दफा अपनी जिंदगी में देख लूं जितना पैसा मेरे पास है तू ले ले। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये नेमत हमें दी जिसकी हमें कोई कदर भी नहीं है, यानी जब होता है इसके अंदर तीर लगवा लेते, जब होता तीर लगवा लेते हैं। एक नामहरम की तरफ निगाह शैतान का वो तीर है, जो इमाम अली बता रहे हैं कि शैतान का वो तीर है जिसको उसने तीर कमान से, यानी कमान को यहां पर रखा हुआ और तीर को खींचा हुआ। तो ऐसे तीर से बचना एक किस्म का नामुमकिन है। हमारे जब होता है तीर लगा लेते हैं आंखों में, जिस तरफ निगाह नहीं करनी निगाह कर रहे होते हैं। आया ये कदर है उस नेमत की, ये कदर हुई। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला चाहे कि चलो तुम ये जो तीर लगवाए जा रहे हो मैं अभी तुम्हारी आंख निकाल लेता हूं, क्या कर सकते हैं? कुछ लोग रोजमाशे में जब उठेंगे कहेंगे खुदाया हमारे पास वो आंखें थी दुनिया में, आज हमें अंधा उठा लिए। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहेगा कि उस वक्त भी तुम अंधे थे, तुम्हें समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम उस वक्त भी अंधे थे इस वजह से आज भी तुम अंधे हो। ये अंधा होना क्या है? यानी खुदा की निशानी है, उसकी नेमतें उसके सामने हो उसे नजर ना आए, यानी उसकी निशानी और नेमतें उसके सामने हो लेकिन उसे नजर ना आए, बजाय इसके कि वो खुदा का शाकिर बने वो किसी और का बन जाए, बजाय इसके कि वो कहे कि खुदा ने मुझे ये सब कुछ दिया वो कहे मैंने सब कुछ लिया, बजाय इसके कि वो कहे कि खुदा की नेमतें इनको उसी मकसद के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा जिस मकसद के लिए खुदा ने मुझे दिए हैं, उन नेमतों को अपने मफाद और खुदखाई के लिए इस्तेमाल करें। अंधा उठेगा। हत्ता हिदायत भी जो है वो खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। जो शख्स हिदायत नहीं पाया, जिस तरह की कुरान की आयत का मैं मफहूम आपको बताया था कि हमने इनको रास्ता दिखा दिया है, इन्ना हदैना सभी हमने दिखा दिया मशाकिर मिम्मा कफूर, अगर चाहेगा तो रस्ते को इख्तियार कर लेगा, शाकिर बन जाएगा, नहीं चाहेगा तो कुफर करेगा, रस्ते को छोड़ देगा। साथ हैं, यानी अब आप थोड़ा वो हो गए ना, क्योंकि हर दफा जब हम आपको थोड़े से कोई मार्फत की बातें करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि अभी नाकों का क्या होगा, वहां पर उठेंगे तो अंधे उठेंगे या देखने वाले उठेंगे। तो चले एक सलावत पढ़े, मैं आपको बताता हूँ कैसे अंधे नहीं उठेंगे। अगर जितना हो सकता है इस दुनिया के अंदर, जितना हो सकता है इस दुनिया के अंदर, अपने आप को खुदा का मोहताज तसव्वुर करें। जितना भी आप इस चीज के ऊपर कोशिश कर सकते हैं, यकीन ला सकते हैं, अपने आप को खुदा का मोहताज समझें। जो भी आप करें, यानी जिस तरह से भी चाहें, जिस कोशिश को चाहे करें, अपनी पूरी जिंदगी का जोर लगा, यानी पूरा का पूरा अपना वजूद लगा दें कि आप इस बात को मान जाएं कि आप खुदा के मोहताज हैं। किसी भी चीज की तरफ अगर निगाह करें ना, अगर कोई नेमत है तो जब नेमत की तरफ निगाह करें तो उधर खुदा को देखने की कोशिश करें। आज आप खाना खाएंगे, आपको अभी जाहिर है कि हम पूरा वो नहीं कर सकते कि किस तरह से हो, चलिए अगर इतनी भी अगर बिनाई कोई हमें बख्श दे कि थोड़ी सी आंखें हमारी उस दिन खुली हों तो ये भी शायद अच्छा हो, क्योंकि बेहतर है ना भी ना उठे इतनी सी आंखें खोलने के लिए जब आप खाने के सामने बैठे। जरा सोचने की कोशिश करें कि ये खाना कहां से चला था। चलिए इसका कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास खाना नहीं है। तो ये गिलास है, ये इस गिलास के अंदर पानी है। मैंने अब पानी पिया, मैंने जैसे पानी पिया मैंने एक दफा भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं। सही है, गफलत के अंदर था। दूसरा मुझे चाहिए था कि मैं इमाम हुसैन को याद करूं, मैंने इमाम हुसैन को भी फॉर एग्जाम्पल याद नहीं किया, जो कि इमाम सज्जाद को इमाम हुसैन ने वसीयत की थी कि जब तुम वापस जाओगे और मेरे शियों से मिलोगे मेरा एक तो सलाम तक पहुंचाना, कि जब मैं असगर जब मेरे हाथों में था उस वक्त मैंने आपको बहुत याद किया। एक ये मैंने बहुत याद किया आपको, दूसरी बात ये कि जब भी वो पानी पिए तो उनसे कहना कि मुझे याद करें। मैंने पानी पिया, मैंने इमाम हुसैन को याद नहीं किया, मैंने ये कुछ नहीं किया। अगर मैं अब इस तरह से चाहूं कि इस पानी के हवाले से तफक्कुर करूं कि ये कहां से चला, यानी ये किस समुंदर से, किस नहर से, किस झील से भाप बना, भाप बन के ये ऊपर गया, ऊपर जाके ये आसमान से नीचे आया, किस जगह पे ये जमा हुआ, वहां से किसने जो है इस पानी को साफ किया, साफ करने के बाद किस किस नालियों से पाइपों से चलता रहा, चल के कहां कहां गया, कितने मील इसने सफर किया, सफर करने के बाद उस जगह पे पहुंचा जहां पे किसी एक ऐसे शख्स को खुदा ने खल्क किया जो कई सालों से इस दुनिया में जिंदगी कर रहा है और उसकी जिंदगी में उसे कई मोड़ों पे डिसीजंस लेनी पड़ी कि वो आज इस जगह पे बैठा हो ताकि वो उठ सके और जाके एक वो कप, जो कप के ऊपर अगर सोच लगेंगे तो फिर और हो जाएगा कि जाए जाके उस कप में पानी डाल के मेरे पास लेकर और मैं इस पानी को पीऊं। कभी सोचने लगे तो इंसान का जहन माउफ हो जाता है, इंसान नहीं इस इल्म को हासिल नहीं कर पाता, यानी उसका जहन माउफ हो जाता है। लेकिन इस तरह से सोच के एक एहसास पैदा होता है, उस एहसास का नाम है शुक्र। ये खुदा ने ये मुझे इतनी ज्यादा वसाइल और असबाब को इकट्ठा करके मुझ तक इस पानी को पहुंचाया, तो मुझे ये तो कम से कम करना चाहिए ना कि मैं उसका शुक्र अदा करूं। नहीं, शुक्र किस तरह से अदा करेंगे, जब पानी को पीने के बाद, इस पानी को की प्यास को बुझाने के बाद आपके अंदर जो ताकत है वो खुदा को दे दें। हमारा एक भाई है, वो पानी पी रहा था, मैंने उसे कहा कि अगर चलते हैं, कहने लगा कि आधा पहले मैं अपने आंखों में आंसू भर लूं। नहीं समझे, पानी पी रहा था, मैंने उसे कहा कि आओ हम चलते हैं, कहता थोड़ी देर इंतजार कर ले मुझे आंसू भर लेने दे। वो पानी को क्यों पी रहा है, प्यास को बुझाने के लिए नहीं, वो पानी को क्यों पी रहा है, प्यास को बुझाने के लिए नहीं, वो पानी को इसलिए पी रहा है कि इमाम हुसैन की गिरिया में मैं ये आंसू बहा सकूं, यानी ये पानी अंदर जाके मेरे वजूद का हिस्सा बने और मैं इमाम हुसैन के लिए इस पानी को अपनी आंखों से गिराऊं। तो कहने लगा मुझे आंसू भर लेने। इंसान जब इस तरह से अपनी जिंदगी को करने लगता है, हर एक चीज को करने से पहले, देखने से पहले इस तरह से कोशिश करता है कि तफक्कुर करे कि किस तरह से खुदा ने उसको सारे वसाइल दिए, तो मुमकिन नहीं है कि उसको मोहब्बत ना हो खुदा के साथ। मुमकिन नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार नमाज में ना करे, मुमकिन नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करबला के मैदान में ना करे, मुमकिन नहीं है। ये जो शुक्र इमाम सज्जाद ने सिखाया है ये वो शुक्र है। आप जानते हैं आशुरा पढ़ते हैं तो सिजदे में क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्द शाकिरीन लका अला मुसाबिह, खुदाया समान भी तमाम हम तेरी हैं, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम तेरे लिए और हम मखसूसी उन शाकिरीन की कि जिन्होंने मुसीबतों के अंदर तेरा शुक्र किया, ये जो मुसीबतों में शुक्र करना है ना, ये शुक्र सिखाया इमाम सज्जाद ने। जब इंसान के पास नेमतें जिनको वो नेमतें समझता है वो बार बार आती रहे, उसके अंदर अगर उसने जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह भी दिया तो ये कोई कमाल नहीं किया। कमाल तो तब है कि हर एक चीज को खुदा के लिए कुर्बान कर दे, और जब कुर्बान करे तो कहे खुदाया तेरा शुक्रिया। बीबी जैनब का आपको पता है ना, जब ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, आप सुनते रहते हो साहिब में सिजदा शुक्र अदा किया है, और सिजदा शुक्र में जो खुदा से कहा खुदाया तेरा शुक्रिया तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल किया। हमारे लिए ये आप कर सकते हैं कि मुझे आज दुनिया की कोई मां दिखा दें, बहुत कम ऐसी माएं होंगी, अलबत्ता कुछ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दिया खुदा के नाम, उसके बाद शुक्रिया अदा किया। कि मुझे कोई मां दिखा दें जिसका दिल इस तरह से हो कि वो अपने बच्चे को पाले, पालने के बाद उसको खुदा की राह में कुर्बान कर दे और सिजदा शुक्र अदा करे कि खुदाया शुक्र तूने मेरी कुर्बानी को कबूल किया। ये जो करबला के अंदर, कूफा और शाम के अंदर जो मसाइब आए हैं, कभी आप नहीं देखेंगे कि ख्वाह वो इमाम हुसैन के असहाब हों, ख्वाह वो अहले बैत हों, कभी नहीं देखेंगे कि उन्होंने कंप्लेन की हो। जितने मसाइब आए उन्होंने उन मसाइब को लिया और कहा कि ये हमारी मोहब्बत का इजहार है। कोई मोहब्बत का इजहार करे सीखे तो करबला से अगर सीख ले तो वो अपने पास कोई चीज नहीं रखेगा, उसकी चीज कितनी कीमती क्यों ना हो। हमारे लिए जाहिर है कि पता नहीं क्यों इस मुहर्रम और सफर में हज़रत अली असगर की बहुत याद आई है। और जिस वजह की तरफ मेरा जहन जाता है वो ये कि हमारे पास खुदा ने एक रहमत दी है जो तकरीबन 6 माह की हो गई है, और जब उसकी तरफ मेरी निगाह गई है, क्योंकि ये आयाम ऐसे हैं, जब भी उसकी तरफ निगाह गई है करबला के अंदर कूफा और शाम में जिस हस्ती की तरफ मेरी तवज्जो गई है वो हज़रत अली असगर है। क्योंकि हज़रत अली असगर का तसव्वुर मेरे ज़हन में नहीं है, मुझे नहीं पता हज़रत अली असगर का चेहरा कैसा था, आंखें कैसे थी, होंठ कैसे थे, हज़रत अली असगर की गालें कैसी थी, गर्दन कैसी थी, हाथ कैसे थे, पांव कैसे थे, मुझे नहीं पता सीना कैसा था, मेरे जहन में कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन जब भी मैं अपनी बेटी की तरफ निगाह करता हूँ जो वो 6 माह की होने लगी है, अजीब एक तसव्वुर सा मेरे जहन के अंदर आ जाता है कि एक बूढ़ा सा बाप है और उसके हाथों में अली असगर। अब वो इतना दर्पाता है क्योंकि पहले जहन में एक तसव्वुर नहीं आ रहा होता था, अब उस तसव्वुर के अंदर मुझे एक 6 माह के बच्चे का तसव्वुर आ जाता है, और वो उस तरह से मोहब्बत का भी एहसास नहीं होता था जिस तरह से एक बाप को 6 माह के बच्चे के साथ मोहब्बत होती है। और जिस तरह से एक बाप को 6 माह के बच्चे के साथ मोहब्बत होती है, अगर उसका बच्चा अली असगर जैसा हो तो कितना प्यार करता होगा वो बाप से। मां के दिल को नहीं समझ सकता इंसान, लेकिन एक एहसास है कि ماں کا دل کس طرح سے ہوتا ہے ایک چھ ماہ کے بچے کے لیے, جب انسان کی نگاہیں اس کے نگاہوں میں پڑتی ہیں نا, تو جو معصومیت نظر آتی ہے, جو معصومیت نظر آتی ہے اس کی مسکراہٹ کے اندر, اس کے چہرے کے اوپر, کہ اگر اس طرح کے بچے کو, معصوم چھ ماہ کے بچے کو تین دن, کہ ہم نے دیکھا کہ جب بچہ روتا ہے کہ ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہے, باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے, پوری کوشش یہ کرتے ہیں رات کا اندھیرا ہو, تھکے ہوئے ہو, جس طرح سے بھی ہو, جیسے بچہ روتا ہے انسان اٹھ جاتا ہے, انسان بھاگ کے جاتا ہے کہ اس بچے کو کیوں رو رہا ہے, بھوک لگی ہے تو بھوک لگی ہے تو دودھ دے, اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے مسئلے کو حل کرے, کوئی بھی چیز ہو تو باپ اور ماں دونوں اس طرح سے ہوتے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک ماں جس کا کہ چھ ماہ کا بچہ اس کے پاس تین دن سے, یعنی اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو دے دے کہ وہ چپ کر جائے. حضرت علیہ السلام کتنا روئے ہوں گے, اور رونے سے انسان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے, کس طرح سے وہ وقت گزرا. امام حسین جب لے کر گئے ہیں ہاتھ میں حضرت علیہ السلام تھے, حضرت علیہ السلام جب ان عدو کے سامنے پہنچے ہیں, انہوں نے جو ایک عمل انجام دیا, اس لشکر کے اندر لوگوں کے دل اتنے سخت تھے نا کہ انہوں نے حضرت علی اکبر کا سینہ اس میں وہ برچی لگا دی تھی, حضرت عباس کے شانوں کو وہ قلم کر چکے تھے, گرز مار چکے تھے, آنکھ میں تیر مار چکے تھے, حضرت قاسم کے جسم مبارک کے اوپر تلواریں چل چکی تھیں, امام حسین کے اصحاب کو وہ شہید کر چکے تھے, کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ عدو رو رہے ہوں, کہ خدا کے دشمن رو رہے ہوں, یعنی اتنے سخت دل لوگ. اب یہ تصور میں لانا پڑے گا کہ اس وقت حضرت علی اصغر کی کیا حالت تھی کہ جس نے ان لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیا ہو, کہ وہ زبان کیسی زبان تھی جو حضرت علی اصغر نے جب نکالی تو اس طرح کے دل پانی ہو گئے. یہ کس طرح کا جہاد تھا حضرت علی اصغر کا کہ پوری فوج کو سرنگون کرنے لگے تھے, ان کو چپ کراؤ. اگر علی اصغر اس طرح سے, اب یہ جو آپ نے سب سنا ہوا ہے, لیکن اگر کبھی اس طرح سے تصور کیا کہ یہ جو ہرملا تھا اس کو حضرت علی اصغر نے اس طرح سے متاثر کر دیا تھا کہ اس سے جو ہے وہ تیر اور کمان جو ہے وہ اپنے قابو میں نہیں رہی تھی, ایک یہ تھا کہ نشانہ ایسا, دوسرا اسے لگتا تھا کہ وہ ماں جو کہ کوفہ کے اندر, شام کے اندر, بازاروں کے زندان کے اندر, وہ ماں وہاں پہ کھڑی دیکھ رہی ہے, یہ جو تیر ہوا کے اندر تھا اس کا جو نشانہ تھا وہ اب میرے ذہن میں تو سب آ جاتا ہے کہ وہ گردن کیا گردن تھی. کہ کس طرح کی گردن تھی کہ جس کو کہ اس تیر نے آ کے کاٹا ہے, اس گردن کے لیے یہ ہرملا کا تیر بے انصافی تھی, یہ بے انصافی تھی. جس انداز میں آ کے لگا ہے, اور امام حسین نے اس خون کو جمع کر کے اپنے ریش مبارک پر, یہ بھی ایک عجیب چیز ہے, یہ اتنی عجیب ہے کہ کربلا کے سارے مصائب جہاں جہاں پہ بھی امام زمان نے زیارت ناریہ میں سلام بھیجا, ان میں سے یہ ایک مصیبت ہے کہ سلام ہو ان سفید بالوں پر جو کہ علی اصغر کے خون سے خضاب ہوئے. مصیبت چھوٹی مصیبت نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ جو امام حسین کہتے ہیں کہ خدا ہے میرے لیے یہ بھی آسان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے کس طرح کا اشارے, کس طرح کی قربانی, اس کا مزداق آپ کو نہیں مل سکتا. لیکن ابھی یہاں پہ امام حسین کی مصیبت ختم نہیں ہوئی. اب اس بچے کو, کیونکہ لاشیں امام حسین نے اٹھائی, دن بھر لاش اٹھاتے رہے, اور جن کے خیموں تک پہنچ سکے ان کو خیموں تک لے کر آئے, جو نہیں اٹھا سکے وہ وہاں پہ رہ گئے, جس میں حضرت ابو الفضل عباس کا ایک, ان یہ لاش چھوٹا سا ہے, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये सबसे भारी लाश है, क्योंकि किसी लाश को उठा के इमाम हुसैन सात दफन आगे गए ना पीछे। कह रहे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदम बे कदाई व तस्लीमन ले अमरे, कभी आगे कभी पीछे। ये जो बोझ इमाम हुसैन को महसूस हो रहा है ना, ये वो है कि वो आंखें मां की किस तरह से मैं देख पाऊंगा। यहाँ पे अजीब, ये जो जनाजा अब ये जो दफन करना है इमाम हुसैन का हजरत अली असगर को, गुर्बत का आलम है, माँ है और बाप है और छोटी सी कब्र को खोदना है, लेकिन कब्र को खोदने के लिए चीजें हैं, हाथों से नहीं खोद रहे। अभी जो रसूल की बेटियां हैं उनके सरों पर चादरें हैं, उनके हाथों में रस्सी नहीं बंधी हुई, उनको एक जिंदान के अंदर कैद नहीं किया गया, इस तरह का नहीं है जनाजा। ये इमाम सज्जाद का है, ये इमाम सज्जाद का है कि जिंदान के अंदर कोई चीज खोदने के लिए नहीं है, रसूल की बेटियों के सरों पर चादरें नहीं है, हाथ उनके बंधे हुए हैं। गुर्बत का ये आलम है कि छोटी सी बहन की लाश पड़ी है, साथ में बाबा का कटा हुआ सर पड़ा है और अपने हाथों से उस कब्र को खोद रहे हैं। अजीब शुक्र है, ये तेरी नेमतों का अजीब शुक्र है, ये अजीब कुर्बानी है। खुदा इमाम सज्जाद के उन हाथों का वास्ता है जिनमें बेड़ी, जिनमें जंजीर भी है, बंधे भी हुए हैं और कब्र भी खोद रहे हैं। खुदा हम वास्ता देते रहे तुझे, हर रोज तुझे वास्ता देते हैं। तूने कहा है कि तू मेरे पास आ, तू मुझे वास्ता दे, हम उन मासूमीन का वास्ता दे रहे हैं कि जिन्होंने तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, हम उसका वास्ता दे के जो तुझसे मांग रहे हैं, अगर वो तुम्हें दे देगा तेरे खजानों के अंदर कोई कमी नहीं होगी। फिर वो मेरे मौला हमारे गुनाह बहुत ज्यादा है, खुदाया इन गुनाहों को माफ कर दे, खुदाया हमारे आमाल में खलूस नहीं है, खुदाया हमारे आमाल में खलूस डाल दे, खुदाया हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कदूरत है, एक दूसरे के लिए नफरत है, खुदाया इन कदूरतों को, इन नफरतों को हमारे दिलों से निकाल दे, खुदाया हमें शाकिरीन में हमारा शुमार कर, खुदाया हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, शुहदा के दर्जात को बुलंद कर, उसरा को रिहाई दे, वो लोग जो कि तेरी मासूमी की ज़ियारत करने के लिए जाए तो खुदाया उनकी उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, उनको मग़फ़रत दे दे, और जो भी तेरे मासूम इमाम हुसैन सलाम की अरबाइन के लिए जाए खुदाया ज़ायरीन की अपनी हिफाजत करना, खुदाया में इमाम के साहब इंसान में शुमार करना, उनका सूर जल्द कर देना मासूम हुसैन।